तभी नरेंद्र की नज़र अर्पिता पर गई, जो वहीं चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे का पीलापन देखकर नरेंद्र खुश हुआ और उसने इधर उधर देखा। उसे कहीं भी मासा नज़र नहीं आ रही थी। वो अर्पिता के पास आकर बोला, क्या बात है अर्पिता, तुम्हारी मासा कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। आखिर होने वाले राजा सा की शादी हो रही है, क्या वे इस शादी में आकर हमारे बहू और बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगी? अर्पिता इससे पहले कि कुछ बोल पाती, नरेंद्र जोर से हंसते हुए बोला, हा हा, कैसे आएंगी वे हमारे बेटे को आशीर्वाद देने, वे तो कमरे में अपनी हार का शोक मना रही होंगी, है ना? अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली। तभी अभिमन्यु की आवाज पूरे हॉल में गूंजते हुए बोली, चाचा सा, किस हार की बात कर रहे हैं आप? शादी भले ही आज यहाँ पर हो जाए, लेकिन राज्याभिषेक तो मेरा ही होगा। अभिमन्यु की आवाज सुनते ही नरेंद्र के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अर्पिता ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनी, वो सीधे दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि अभिमन्यु बिल्कुल अपने कुंवर सवाले अंदाज में खड़ा है। उसने प्रॉपर 3-पीस सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में उसकी फेवरेट वॉच थी, उसके चेहरे पर सनग्लासेस थे और उसके बाल अच्छी तरह से सेट थे। वो पूरे कॉन्फिडेंस से राजमहल के अंदर चलकर आया और नरेंद्र के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही अर्पिता ने अभिमन्यु को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहा, भाई सा, आप आ गए? अर्पिता को इस तरह रोते देखकर अभिमन्यु ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे को हल्के से सहलाते हुए कहा, आप रो क्यों रही हैं अर्पिता? हम जानते हैं आपके साथ कुछ लोगों ने काफी बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब हम आ गए हैं, कोई भी आपके साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर अभिमन्यु नरेंद्र को घूरते हुए देखने लगा और तभी महल में जितने भी लोग खड़े थे, उन सबकी आंखें अभिमन्यु को देखकर हैरान हो चुकी थीं। वहीं घर के कुछ वफादार नौकर थे जो अभिमन्यु को देखकर खुश हो गए। तभी मासा के मैनेजर ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, वे भागते हुए सीधे मासा के कमरे में पहुंच गए। मासा अपने बिस्तर पर आंख बंद करके बैठी हुई थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे काफी ज्यादा परेशान हैं। तभी उनके मैनेजर उनके पास आकर बोले, रानी सा, आप यहां पर इस तरह से क्यों बैठी हैं? चलिए नीचे चलिए। मासा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, आप जाइए यहां से। मैनेजर ने मासा के पास आकर कहा, रानी सा, कुंवर सा आ गए हैं, क्या आप अभी भी नीचे नहीं चलेंगी? मासा ने जैसे ही अभिमन्यु का नाम सुना, वे जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर खड़ी होते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने, अभिमन्यु आ गए? मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वे नीचे हैं और हमें लगता है आपको नीचे चलना चाहिए। मासा ने अपनी साड़ी के पल्लू को अपने दूसरे हाथ में थामा और वे तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, अभिमन्यु आ गए। वे अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु नरेंद्र के सामने खड़ा था और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मासा अभिमन्यु को देखकर इतनी ज्यादा खुश हुई कि वे सीधे सीढ़ियां उतरकर नीचे आईं। अभिमन्यु उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके पास जाकर अभिमन्यु ने मासा के पैर छूते हुए कहा, कैसी है मासा? मासा ने जल्दी से अभिमन्यु को अपने गले लगाते हुए कहा, अभी तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप आ गए हैं ना, तो अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वहीं अभिनव, जो मंडप में बैठा था, उसने अभिमन्यु को देखा और उसे देखकर वो थोड़ा सा घबराते हुए बोला, अच्छा तो ये है अभिमन्यु, ये तो दिखने में ही बड़ा पावरफुल लग रहा है, इसे देखकर मुझे नहीं लगता मैं इसके आगे कहीं भी टिक पाऊंगा, इस नरेंद्र ने तो मुझे बेकार में ही यहाँ फंसा दिया है। अभिनव अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और तभी अभिमन्यु ने जैसे ही उसे देखा, वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, हमारे मुंह बोले बड़े भाई, शादी कर रहे हैं, अब राजा सा बनना है आपको। अभिनव ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो नरेंद्र की तरफ घूरते हुए देखने लगा और नरेंद्र तेज कदमों से अभिमन्यु के पास आकर बोला, तमीज से बात करो अभिमन्यु, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम कब इस बात से मना कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी खुशियों पर पानी फेरने वाले हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और नरेंद्र उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर गुस्से से बोला, कुछ नहीं कर सकते तुम, आज हमारे बेटे अभिनव की शादी होगी और हम कल ही अभिनव का राज्याभिषेक करेंगे। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर तेज आवाज में हंसते हुए बोला, हाँ हाँ चाचा जी, सच में आप इतने भोले हैं या फिर सिर्फ भोले बनने का नाटक करते हैं? जैसे ही नरेंद्र ने उसकी बात सुनी, उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। अभिमन्यु ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, भले ही ये शादी हो जाए, लेकिन राज्याभिषेक तो हमारा होगा, क्योंकि आपके इस मुंह बोले बेटे की शादी भले ही आप करा सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य घराने का राजा नहीं बना सकते, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है और अब हमें राजमहल का राजा सा बनने से कोई नहीं रोक सकता,
राज्याभिषेक तो हमारा ही होगा। जैसे ही ये बात सुनी, मासा अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। अर्पिता और समर्थ भी वहीं पर खड़े थे और समर्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अर्पिता के चेहरे पर कन्फ्यूजन। उसने अभिमन्यु की ये बात सुनकर अपने मन में कहा, क्या कहा भाई साने, उनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारी शादी आपके बेटे से पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब राज्याभिषेक तो हमारा ही होगा। नरेंद्र ने गुस्से से अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, किससे हुई है तुम्हारी शादी? हमने तो नहीं देखा तुम्हारी शादी होते हुए, हम कैसे माने तुम्हारी बात को? और अगर तुम्हारी सच में शादी हुई है तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई भी नजर नहीं आ रहा। अभिमन्यु नरेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर नरेंद्र ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, इस तरह हंसने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी पत्नी को हम सबके सामने लाना होगा। आखिर हम भी तो देखें किसे अपनी पत्नी बनकर लाए हो तुम, और हमें अपनी शादी का प्रूफ भी दिखाओ। है तुम्हारे पास कोई सबूत? मासा नरेंद्र और अभिमन्यु की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ वहां खड़े लोगों के सर के ऊपर से जा रहा था। बस एक समर्थ ही था जो उन दोनों की बातें सुनकर बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था और मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। अभिमन्यु ने नरेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम अपने चाचा सा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको क्या लगता है हम इस तरह यहाँ राजमहल में सबके सामने झूठ बोलेंगे? ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? हमारे पास हमारी पत्नी भी है और आपको दिखाने का सबूत भी। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हुआ और उसने दरवाजे की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, राजवंशी परिवार की बहू, अंदर आइए। जैसे ही अभिमन्यु ने दरवाजे की तरफ देखकर ये बात कही, इप्सिता नंदिनी और उदय के साथ घर के अंदर आई। इप्सिता बीच में खड़ी थी और उसके एक तरफ उदय और दूसरी तरफ नंदिनी थे। इप्सिता को मेन गेट पर देखकर सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहीं नरेंद्र की तो बोली ही बंद हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु की बात पर यकीन करे या नहीं। तभी पल्लवी और कियारा कनिका को लेकर नीचे उतरी। उसने देखा वहां जितने भी लोग खड़े थे सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। कियारा और अदिति ने जैसे ही सामने इप्सिता को नंदिनी और उदय के साथ देखा, वे लोग तो वहीं चलते चलते रुक गई। कियारा ने धीमी आवाज में कहा, इप्सिता भाभी सा, यहाँ क्या कर रही हैं?
कियारा की ये बात सुनकर अदिति ने बिल्कुल हैरान होते हुए कहा, इप्सिता भाभी सा इस रेड कलर की साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हैं। उनके गले का मंगलसूत्र देखो, मुझे तो लग ही नहीं रहा था वे इतनी ज्यादा खूबसूरत भी लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने मंगलसूत्र और साड़ी क्यों पहन रखी है? अदिति के मुंह से ये सवाल सुनकर कियारा की आंखें थोड़ी सी हैरान हो गई थीं। वो अपनी मासा की तरफ देखने लगी। पल्लवी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और कनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर इस टाइम क्या हो रहा है। वो उन तीनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्सिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पल्लवी ने देखा वहां पर कितने सारे लोग खड़े थे, साथ ही सामने मासा और अर्पिता भी थीं। लेकिन इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ के अलावा और किसी को भी नहीं देखा। उसने तुरंत अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रख दिया। जैसे ही अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा, मासा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इप्सिता को अंदर लाकर अभिमन्यु ने उसे अपने बगल में खड़ा करते हुए कहा, ये लीजिए चाचा जी, आप पूछ रहे थे ना कि मेरी पत्नी कौन है, तो ये है मेरी पत्नी। नरेंद्र ने इप्सिता को गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, नहीं, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? तुम तो इसे भरे मंडप में छोड़कर चले गए थे, तो फिर नहीं नहीं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। नरेंद्र की ये बात सुनकर पल्लवी भागते हुए उसके पास आई और उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा सा, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उस दिन मंडप में क्यों नहीं आए थे। अगर भूल गए हैं तो बताइए, हम फिर से याद दिला सकते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु उन्हें गुस्से से घूरते हुए देखने लगा। तभी इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया और इप्सिता पल्लवी और नरेंद्र की तरफ ही देख रही थी। तभी नरेंद्र इप्सिता को गुस्से से घूरते हुए देखकर बोला, कैसी लड़की हो तुम, जो तुम्हें मंडप में छोड़कर गया तुमने उससे ही शादी कर ली।